तो प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर से कृपा से हम यहाँ आपको मिलने के लिए परमेश्वर ने एक मौका दे दिया है। आप सभी को हमारे बेंगलोर के हर एक भाई और बहन का बधाई देते हैं। वहाँ बहुत से भाई और बहन हैं और यहाँ आपको ये सच्चाई सुनने के लिए परमेश्वर मौका दे रहे हैं, इसके लिए वहाँ भाई और बहन बहुत खुश हो गए। आपके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं कि आप इस सच्चाई की जो रोशनी आपके आंखों पे पड़े और आप जान ले कि कितना फर्क है सच्चाई और झूठ, अर्थात विश्वास और अति पवित्र विश्वास। तो आप अभी तक 14 पाठ देख चुका है। सबसे आश्चर्य पाठ हो गया होगा कि ये आत्मा क्या चीज है। इतने साल आप सोच रहे होंगे कि आप एक शरीर और आपका आत्मा आपके अंदर थे और मरते समय आत्मा आपसे निकलते और चले जाते एक तो स्वर्ग या तो नरक, और हमारे रोमन कैथोलिक दोस्तों सोचते हैं कि तीसरा एक स्थान भी है जहां जाता है, जो पूरा पूरा स्वर्ग जाने को काबिल नहीं है या बिल्कुल इतना बुरा नहीं है को नरक जाने को काबिल है। तो उसको स्वर्ग जाने के लिए काबिलियत बनने के लिए थोड़ा कुछ दंड एक तीसरी स्थान में मिलके उसके बाद वो उचित समय के बाद वो जाएगा स्वर्ग को। तो ये सारा बातें हम देखा परमेश्वर के वचन में नहीं होता है। परमेश्वर के वचन में बहुत साफ साफ दिया है, जो आत्मा पाप करता है वो आत्मा
मरेगा।
बहुत ही आश्चर्यपूर्वक बात है कि आत्मा मरता है। और सब और भी एक बड़ी बात क्या आपने समझ लिया कि आप सभी के पास आत्मा नहीं है, हमारे पास ना आत्मा है ना आपके पास आत्मा है, बल्कि आप खुद ही आत्मा है, हम खुद ही आत्मा है। हमारे पास आत्मा नहीं है, हमारे अंदर कोई आत्मा नहीं है, हम खुद ही आत्मा है। क्योंकि आत्मा बनने के लिए दो चीज चाहिए, शरीर और स्वास्थ्य। तो शरीर और सांस जब दोनों मिलजुलते हैं तभी बन जाता है एक आत्मा। जब बंटवारा होता है, सांस निकल जाता है शरीर से, तो शरीर वापस शरीर ही बन जाता है, मरे हुए शरीर, बिना जीवन का शरीर। वो बिना जीवन का शरीर किधर दोबारा डालता है, जहां से लिया मिट्टी से लिया और मिट्टी को वापस जाता है। और वो सांस जो शक्ति जो परमेश्वर मनुष्य को दिया ताकि वो जी ले, वो किधर जाता है, वापस परमेश्वर के पास। इसमें कुछ नाम नहीं है, आपका सांस का नाम है, मेरा सांस का नाम है, एक एक भाई और बहन अपने अपने सांस के लिए एक नाम ऐसा नहीं रखा है। ये एक ऐसा शक्ति है जो न सिर्फ मनुष्य में है, जानवर में भी है, मछली में भी है, और क्या बोलते हैं पंछी में भी है, हर एक जो जिसमें जीवन है उसमें सांस है। और वो सांस एक क्या बोलता है एक मामूली चीज है जो हर एक में होता है जिसमें जान होता है। तो ये सब सुनने और जानने के बाद शायद आपको बहुत ही हैरान हो गया होगा कि जो इतने साल आप सुन के मान रहे थे वो परमेश्वर के वचन में नहीं दिया गया है। बिल्कुल अलग बात है, इसलिए कि आज तक आप परमेश्वर के वचन सही तरीके से पढ़ने को मौका नहीं मिला, अभी उसका मौका मिल रहा है। आपको याद होगा पहला क्लास मैं भी आया था मार्च के महीने में, मैं अंदर भी नहीं आ सका, मैं इतना दर्द मेरा पैर में थे कि बाहरी में थे, आप सब लोग एक ही रूम में इकट्ठा हुए और ब्रदर ने एक क्लास लिया, मतलब वही वहां तो बाइबल को पढ़ने के लिए थोड़ा क्या बोलता है आई ओपनिंग पॉइंट, आंख खुलने की बातें आंख खुलने की बातें लिया। और उसके बाद पहला क्लास लिया, मतलब बाइबल को खोलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चाबियां हैं, और वो चाबियां से आप जब वो चाबियां आप इस्तेमाल करके अभी आप जानते हैं कि बाइबल कैसे पढ़ना है। ऐसा कोई साधारण पुस्तक की जैसा नहीं है, मतलब एक पन्ना से दूसरा पन्ना, दूसरा पन्ना से दूसरा पन्ना, ऐसा पढ़े तो आप कुछ भी नहीं समझेगा बाइबल में, क्योंकि बाइबल का सच्चाई परमेश्वर कैसे रखा, इधर तोड़ा उधर तोड़ा। तो ये सारा रहस्य आप जानने के बाद आप बाइबल के सच्चाई प्रकट होने लगा और आज वो समय आ गया कि हम कब से क्या बोलते हैं कब से पॉपुलर वो क्या कहता है मशहूर सबसे मशहूर पार्ट को हम आ गया है नरक। आजकल हर एक टीवी में हर एक बाइबल का चैनल या आत्मिक चैनल में बोलते हैं ज्यादा नरक के बारे में कौन कौन नरक में है बहुत से वही चर्च के प्रचार होते हैं बहुत से पास्टरों ने नरक को चले जाते हैं और नरक का नक्शा देखते हैं और ये वहाँ देखा उनको वहाँ देखा वगैरह वगैरह वो बताता है कि वो कैसा कैसा दर्शन हुआ नरक का। हमारा साउथ में एक पास्टर है वो गया साइबेरिया के वो जो क्या बोलते हैं माइंड नीचे खान में गया नीचे गया और नीचे जाके वहाँ कुछ रिकॉर्डिंग किया और वो रिकॉर्डिंग ऐसा आवाज निकल रहा था जैसा कोई बहुत से लोग पीड़ा और गम में थे ऐसे चिल्ला रहे थे ऐसे बहुत ही उसके उसका गम और पीड़ा बचाओ बचाओ मेरे को बहुत ऐसा ऐसा वगैरह को आवाज चिल्लाने का आवाज निकल रहा था। ये सब रिकॉर्डिंग किया रिकॉर्डिंग करके कैसेट भी निकाला और इस कैसेट में बोला देखो ये है नरक का आवाज अगर तुम लोग ये नहीं मानता है तो मर के जाके देखो ऐसा बोला। लेकिन हम आपको ऐसा नहीं बोलेंगे मैं आपको बताता हूं कि आज हम नरक का सच्चाई देखेंगे नरक का आवाज नहीं नरक का सच्चाई। तो नरक का सच्चाई क्या है क्योंकि नरक है बाइबल में नरक नहीं है हम नहीं बोला हम अगर आप बाइबल पढ़े तो आप देखते हैं नरक है बाइबल में तो नरक का मतलब क्या है क्योंकि तीन क्लास में हमने देखा कि आत्मा मरता है तो आत्मा जिंदा होके कोई नरक में जा नहीं सकता क्योंकि आत्मा का जिंदगी चले जाता है जब मौत आता है क्योंकि बंटवारा होता है उधर शरीर का और सांस का तो वहां उसके बाद जीवन नहीं है। तो नरक क्या चीज है नरक का मतलब क्या है नरक का सच्चाई क्या है ये बात तो आज हम देखना है। उसके बाद और भी घबराहट देने बात है शैतान के बारे में बोलता है शैतान नरक का देखभाल करने वाला हमेशा आत्माओं को नरक को लेके जाने के लिए प्रयास में है और नरक एक ऐसा जगह है जहां आग ही आग है जो बुझ नहीं सकता। तो ये नरक क्या बात है नरक का सच्चाई क्या है क्या ये सब सच है क्या शैतान नरक का रखवाला है क्या नरक में ऐसा आग है जो बुझ नहीं सकता ये क्या है नरक आज हम नरक की सच्चाई देखेंगे। ये नरक की बात में अंदर जाने से पहले हम एक बात को आपको बताना चाहिए एक दिन दो लोग बैठ रहे थे एक न्यायालय में आपको जानता है ना कोर्ट में एक न्याय चल रहा था एक आदमी का जो कोई चोरी किया तो उस चोरी के इल्जाम में कोई न्याय चल रहा था और इन दोनों के बीच में बात हो रहा है मतलब बैठा हुआ देखने वाले एक आदमी बोलता है यार आजकल बहुत ज्यादा चोरी हो रहा है इस चोरी को कम होना चाहिए। हाँ दूसरा आदमी बोलता है हाँ बहुत ज्यादा चोरी हो रहा है देखेंगे क्या न्याय देंगे वो दूसरा आदमी बोलता है नहीं बट सख्त से सख्त दंड देना चाहिए सख्त से सख्त के सख्त सजा देना चाहिए तभी ये चोरी का काम कम हो जाएगा। हाँ देखेंगे क्या सजा देंगे दोबारा बोलता है नहीं फांसी का सजा देना। ये आदमी बोलता है अरे क्या बात करते हो यहाँ चोरी हुआ है चोरी के लिए फांसी का दंड आप पूछ रहे हैं फांसी का सजा तो नहीं दे सकता मैं चोरी के लिए। ऐसा बातें हो रहा है दो आदमी एक न्यायालय में बैठ के एक चोर का जो केस देखते हुए तो दोनों आदमी पापी थे एक पापी दूसरे पापी से बात करते वक्त एक तीसरी पापी का सजा कौन सा सजा देना न्याय के हिसाब में बातचीत हो रहा है बोलता है चोरी के लिए सजा फांसी नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जुर्म नहीं है, ये जुर्म इतना बड़ा नहीं है जिसके लिए आप फांसी का सजा दें। तो देख लो, पापियों के बीच में वाद विवाद चल रहा है सजा जो न्यायित हो, सजा जो न्यायित हो। उसी तरह हम भी अभी परमेश्वर से पूछ रहे हैं, परमेश्वर आपका सजा क्या है मनुष्य के लिए, क्योंकि आज तक हमने क्या सुन के आया है, नरक है सजा पापियों के लिए, नरक है, और वो नरक सजा समय के लिए आत्मा उधर अंदर डालता है। चलो ये बात अभी हम देख लेंगे कि बाइबल के सच्चाई है कि नहीं। परमेश्वर न्यायित परमेश्वर है, वचन में पढ़ लो परमेश्वर के न्याय के गुण के बारे में, भजन संहिता 89:14। भजन संहिता 99
तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है।
देखा, तेरा सिंहासन के मूल
धर्म और न्याय है,
धर्म और न्याय मतलब परमेश्वर के हर एक कर्म का आधार है न्याय। तो इतना न्यायित परमेश्वर जब मनुष्य को दंड देता है, सजा देता है पाप के लिए, कौन सा सजा न्यायित है सोच लो। सोच लो उदाहरण से, एक आदमी 90 साल की उम्र को रहते हैं, 90 साल में मर जाते हैं, उस 90 साल में कितने साल का पाप किया होगा, एक एक दिन 24 घंटे, उस 24 घंटे में 8 घंटे नींद, एक और 8 घंटे काम, बाकी का 8 घंटे में 2 घंटे नहाना खाना पीना वगैरह। सोच लो कि 6 घंटे हर एक दिन वो पाप किया बिना कोई रुकावट के लगातार, तो एक दिन में 24 घंटे में कितना घंटे पाप, 6 घंटे, तो वो कितना प्रतिशत है एक दिन का, 25%। तो अगर उसका उम्र मरते समय 80 साल होते तो उसका पाप का समय कितना होगा,
20 साल।
चलो 20 साल के पाप के लिए कितना सजा देना है, 20 करोड़ साल नरक में, 20 करोड़ 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 करोड़। मैं नहीं रुक सकता क्योंकि वहां बोलता है कि वहां का सजा रुकता भी नहीं है, तो मैं ऐसे बोलते ही जाना है। क्या इतना सजा परमेश्वर देगा, क्या ये न्यायित दंड है 20 साल? मैं बोलता हूं देखो, बिना कोई मतलब हॉलीडे, हॉलीडे मतलब बिना कोई छुट्टी, बिना कोई छुट्टी लगातार पाप करता है पूरा 80 साल 6 घंटा हर दिन, 20 साल का पाप क्या न्यायित दंड है? देखो बहुत सोचने की बात है ना। तो न्याय के न्याय के बात सोचते हुए अभी परमेश्वर के वचन में जाकर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन पाप के बारे में और पाप के दंड के बारे में, सजा के बारे में क्या बोलते हैं। रोमियो में पढ़ेंगे, रोमियो 6:23।
क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है।
देखो, पाप की मजदूरी मृत्यु है, वहां नरक नहीं दिया, नरक नहीं बोला, तो पाप के मजदूरी मृत्यु है। तो नरक क्या चीज है, नरक क्या चीज है? क्योंकि पाप का मजदूरी अगर मृत्यु हो तो नरक क्या चीज है? आपको याद हो ना पहले 3 क्लास, जो आत्मा पाप करता है उसको क्या होता है, मरता है। तो पाप का मजदूरी मौत है, तो नरक क्या है, नरक क्या है? यहाँ नरक की बात ही नहीं हुआ, तो नरक क्या है, नरक का मतलब क्या है? देखो, नरक की बात हम अगर समझना है तो हम देखना है कि बाइबल के दो नियम हैं, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम में नरक है, नया नियम में भी नरक है। पुराना नियम का भाषा हिब्रियर हिब्रू और हिब्रानियम, और नया नियम का भाषा है ग्रीक। तो हिब्रानियों में और ग्रीक में कौन सा शब्द है जो नरक के अनुवाद में आ गया है, ये बात तो हम देखना है। तो ये बात तो हम देखेंगे, क्योंकि ये बात अगर हम देखें तो हम साफ साफ समझ जाएंगे कि बाइबल में, मतलब बाइबल के अनुसार नरक क्या होता है। तो पुराना नियम से शुरू करेंगे। पुराना नियम में हम देखते हैं एक ही शब्द हिब्रानियों में है, वो एक ही शब्द का है शियोल। शियोल जो है ये हिब्रानियों का शब्द है। हिब्रानियों का शब्द होते हुए इसका अनुवाद, बहुत आश्चर्य बात है कि ये शियोल का शब्द बाइबल में, मतलब पुराना नियम में कितना कुल मिला के 65 टाइम 65 बार आता है, उसमें 31 बार नरक, 31 बार पिट को क्या कहते हैं गड्ढा, और सॉरी 31 बार नरक, 31 बार समाधि कब्र, और 3 बार गड्ढा। एक ही शब्द है शियोल है, उसको 31 बार नरक, 31 बार कब्र और 3 बार गड्ढा, एक ही शब्द। तो इसका मतलब क्या है, गड्ढा कब्र होता है ना, क्योंकि कब्र में हम जब दफना करता है तो किधर डालते हैं, गड्ढा के अंदर, और गड्ढा तो मिट्टी से बंद करता है ना। तो ये जो नरक है, क्या ये नरक कब्र है, क्या नरक का मतलब कब्र है? क्योंकि देखो 65 बार पुराना नियम में एक ही शब्द आता है शियोल, उसमें 31 बार अनुवाद हुआ नरक, 31 बार अनुवाद हुआ कब्र, और 3 बार गड्ढा। सोच लो इसका मतलब क्या होगा। अगर इस बात को आप देखें तो ऐसा लगता है कि गड्ढा ही कब्र और कब्र ही नरक, ऐसा हमारे को लगता है, क्योंकि ये बात सोचते हुए। चलो ये बात तो हम बाइबल में देख लेंगे। भजन संहिता 9वां अध्याय 17वां वचन 9:17,
दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं।
तो ये अधोलोक दिया गया है ना हिंदी में, तो इंग्लिश बाइबल किसके पास है, या पंजाबी में पढ़ो और साथ में
पताल विच मुड़ जाएंगे, दुष्ट पताल विच मुड़ जाएंगे,
पताल वहां पताल आता है। हिंदी में अधोलोक आता है, तो अंग्रेजी में हम देखते हैं केजेवी में हम देखते हैं द विकेड शैल बी टर्न्ड इनटू हेल एंड ऑल द नेशंस दैट फॉरगेट गॉड, ये केजेवी बाइबल में। एनआईवी बाइबल में द विकेड रिटर्न टू द ग्रेव ऑल द नेशंस दैट फॉरगेट गॉड। तो देखो अधोलोक हिंदी में, पताल पंजाबी में, लेकिन अंग्रेजी में अगर केजेवी और एनआईवी आप देखें, एक तो बोलता है नरक, दूसरा बोलता है कब्र। तो ये दोनों अगर हम कंपेयर करें, हमारे को बहुत साफ साफ प्रकट होता है कि कब्र ही नरक है और नरक ही कब्र है। चलो हम आगे देखेंगे, शायद आपको बहुत सवाल पैदा हो रहा है अंदर, क्या कब्र ही नरक है, उतना ही देख लेंगे। अभी क्लास तो शुरू हो गया, तो ये नरक की बात का मतलब क्या है ये हम अभी वचन से देख लेंगे। पहले बार परमेश्वर के वचन में नरक का जो शब्द कब आया, मतलब शियोल का शब्द कब इस्तेमाल हुआ, ये वचन में पढ़ लेंगे। उत्पत्ति 37 और 37 35।
उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति ना मिली, और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा।
तो अधोलोक में उतर जाऊंगा, अधोलोक, तो हिंदी में अधोलोक, वो दोबारा वो पढ़ लीजिए, वो जब आज अभी जो हम पढ़ा इससे पहले भजन संहिता 9:17।
दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब
देखो दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे। लौट, जरा नोट करो, लौट, लौट का मतलब क्या है? उधर था, बाहर आया, दोबारा वापस जा रहा है कि नहीं? मैं घर को लौट जाएंगे, लौट आऊंगा का मतलब क्या है? घर में थे, घर से निकला और दोबारा घर को फिर आ रहा हूँ। तो देखो ये मतलब, देखो एक एक शब्द को हम ध्यान देना चाहिए परमेश्वर के ग्रंथ में। वहां तो देख रहा है दुष्ट लौट आएंगे का मतलब क्या है, उसी अधोलोक में दुष्ट थे, बाहर आया, दोबारा जीवन मिला और कोई भी किसी भी कारण के वास्ते दोबारा उसी अधोलोक को चले जाते हैं, लौट जाता है। तो ये बात तो याद में रखो कि ये जो अधोलोक जो हिंदी में और पाताल पंजाब में पंजाबी में, ये तो मतलब कब्र ही लग रहा है। ये बात अभी हम साफ साफ करेंगे बाइबल के वचन से। पुराने नियम में एक वचन है जहां परमेश्वर के ढंग से साफ साफ बताता है कि नरक क्या है, अधोलोक क्या है और कब्र क्या है। तीनों एक ही है, बताता है एक वचन में। वचन पढ़ लो, यशाया 38:18।
क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है।
देखो, अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। धन्यवाद मतलब स्तुति। अभी स्तुति अधोलोक नहीं है, स्तुति क्या है? मृत्यु आपका स्तुति नहीं कर सकता। आगे बढ़ो।
जो कब्रों में, जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते।
देखो तो अधोलोक, मृत्यु और कब्र एक ही वचन में परमेश्वर बताता है। वो तीन मतलब एक ही होता है, एक ही होता है। पहला अधोलोक, दूसरा मृत्यु, तीसरा कब्र। आपको याद होगा पाप का मजदूरी क्या है?
मौत।
तो पाप का मजदूरी अगर मौत है तो मौत ही नरक है, मौत ही कब्र है, तो कब्र ही नरक है। देखो देखो, आप समझ रहे ना, देखो कैसे परमेश्वर दिया गया है, ये मतलब कितना साफ साफ है परमेश्वर के वचन में। ये बात तो यहाँ तो हम देख रहे हैं, तो ये मतलब बहुत साफ प्रकट हो रहा है। तो ये कब्र, ये है परमेश्वर का नरक जो हम परमेश्वर के वचन में देख रहे हैं। और ये जो नरक जो होता है, ये तो जो कब्र का स्थिति और मौत का स्थिति, वचन में हम पढ़ेंगे कि जहां जहां वचन है अधोलोक के बारे में बताता है कि वहां रोशनी नहीं है। अगर वहां आग होता क्या होना चाहिए? रोशनी होना चाहिए। और वहां आवाज नहीं है। अगर वो नरक था जहां आत्माओं जिंदा डालते थे, तो वहां से क्या 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 आवाज वहां से निकलना है? चिल्लाने का आवाज निकलना है, लेकिन वहां सन्नाटा है। ये सब हम देखेंगे अभी एक एक बात। इसलिए बाइबल पढ़ने में बहुत ही बात है कि यहां तोड़ा वहां तोड़ा, हम नाप नाप के क्या करना है? परमेश्वर के वचन लेके पढ़ना है और उसके अंदरूनी मतलब हम पता करना है। अभी देख लेंगे इस सियोल, इस नरक के थोड़े शब्द, थोड़े वचनों। पहला पढ़ेंगे अय्यूब 10:1। 21वां वचन।
इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर ना लौटूंगा अर्थात अंधेरे और घोर अंधकार के देश में जहां अंधकार ही अंधकार है।
कहां जाएगा, कौन सा देश में जाएगा?
अंधकार,
अंधकार, घोर अंधकार है जहां अंधकार ही अंधकार है। और भी कितना अंधकार के बारे में बात करने हैं, जरा भी रोशनी भी नहीं है। अंधकार ही अंधकार का मतलब क्या है? जरा भी रोशनी नहीं है। जहां आग है वहां रोशनी होना चाहिए, यहां आग ही नहीं है, यहां अंधकार ही अंधकार है, ये घोर अंधकार है। समझा? अभी चिल्लाने का बात देख लेंगे, वहां चिल्लाते हैं क्या, वहां आवाज निकलता है क्या? पढ़ लेंगे शियोल के एक और वचन, ये भजन संहिता 115:17, भजन संहिता 115:17।
मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यह की स्तुति नहीं कर सकते।
तो मृत्यु में, कब्र में, शियोल में, नरक में कैसे लोग हैं?
चुपचाप।
बात नहीं कर सकता क्योंकि बात करने के लिए जीव चाहिए और जीव गया किधर? मिट्टी में। तो कैसे बात करेंगे जब जीव नहीं है? जब जीव मिलता है तभी तो क्या कर सकता है, बात कर सकते। जीव कहाँ गया? मिट्टी में गया। तो यह वहां बात करने की गुंजाइश ही नहीं है। एक और जगह देखेंगे यही नरक के बारे में और यही शियोल के बारे में। कभी कभी पास्टर बोलते हैं जब वो दर्शन में चले जाते हैं नरक का, बोलते हैं वहाँ बहुत से पास्टर भी है जो चोरी किया अपने अपने चर्चों में, और वो पास्टर बोलते हैं कि पुराने पुराने क्या क्या किया, और बोलता हमारे को बचाओ, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा चिल्लाते हैं, ऐसे सब सारा प्रोग्राम में आता, लोग देखते हैं, और पास्टर बोलता देख ऐसा जगह में गया, तुम ऐसा जगह में नहीं जाना है, ऐसा उंगली ऐसा आता है टीवी के बाहर से। तो ये चीज क्या है, ये क्या सच्चा है? क्या वहां नरक में बातचीत होता है, याद होता है, वो सब होता है? वचन में पढ़ लेंगे पता ही क्या है उस नरक के बारे में, क्योंकि वो शेयर के शब्द वहां भजन संहिता 98:11-12 88 भजन संहिता 88:11-12
क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में या तेरा धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा?
देखा ये जगह जगह क्या बोला,
कब्र में, क्या कब्र में तेरी करुणा और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा?
और
क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में या तेरा धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा?
विश्वासघात, विश्वासघात का मतलब
जो भूलने वाला देश।
तो भूलने वाला देश यही आता है अंग्रेजी में देखे तो, द लैंड ऑफ फॉरगेटफुलनेस, मतलब पंजाबी पढ़ लो
कि कवर विच तेरी दया अते नरक कुंड विच तेरी सच्चाई दा वर्णन होवेगा, कि तेरे अचरज हनेरे विच जाने जानगे अते तेरा धर्म भुलनहारे देश विच।
भुलनहारे मतलब भूल के देश में, जहाँ याद ही नहीं है, यहाँ याद नहीं कर सकता, क्योंकि याद करने के लिए मन चाहिए, दिमाग चाहिए, वहां ना दिमाग है ना मन है तो कैसे याद करेगा? देखा, तो साफ साफ वचनों के जरिए से हम देखता है, हम समझता है कि ये जो शियोल के शब्द जो पुराना नियम में इब्रानियों में आता है, ये शियोल का शब्द का मतलब तीन था, पहला मैंने बताया आपको नरक के एक मतलब, दूसरा कब्र और तीसरा कर्ड, ये तीनों एक ही मतलब है, मतलब कर्ड है कब्र, कब्र है मृत्यु, मृत्यु है नरक। यही हमने बहुत बहुत साफ तरीके से सीख लिया है। दोबारा एक और वचन में हम पढ़ लेंगे इस जगह में, मतलब शियोल मतलब नरक में, वहां जीवन ही नहीं रहता है। एक मतलब सबोपदेशक नवा अध्याय दसवां वचन समुपदेशक 9:10
जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है ना काम ना युक्ति ना ज्ञान और ना बुद्धि है।
देखो जहाँ आप जाता है वहाँ सोचने का नहीं है करने का नहीं है कुछ भी नहीं है मतलब वो स्थिति कुछ भी नहीं का स्थिति है वो ऐसा स्थिति आप जाने वाला है जहाँ आप सोच नहीं सकता आप कर नहीं सकता आप बोल नहीं सकता आप ऐसा हालात में जाने वाला है जहाँ कुछ भी नहीं है समझ गया मतलब जीवन ही नहीं है। तो ये बात बहुत साफ स्थापित हो रहा है एक एक वचन में आपको लिए पढ़ लिया जहां जहां शियोल के शब्द आता है हर एक वचन में बताता है कि ये शियोल ये नरक कब्र है मरे हुए स्थिति है खड़ा है खड़ है और हम क्या बोलूं जैसे जैसे पहला पहला हमने पढ़ा पाप का मजदूरी है मौत। तो ये नरक है मौत मौत का स्थिति अभी ये मौत का स्थिति है नरक यहां बाइबल में। अगर इस दुनिया में सच्चाई होते हर एक कब्रिस्तान के सामने एक बोर्ड लगाए देते उसका नाम क्या होगा नरक क्योंकि नरक किधर है एक एक कब्रिस्तान नरक है। अगले बार अगर कोई गुस्से में आपसे बोलता है तुम नरक नरक छोड़े जाओ बोले तो जरूर मैं जाऊंगा आप भी साथ में आएंगे क्योंकि हम सब नरक पे जाना है कोई बचने वाला नहीं है ये सच्चाई है कि नहीं। तो ये प्रभु यीशु मसीह के दया से अभी सारे के सारे जो जो नरक में गया वो सारे के सारे जी उठने वाला है वापस जीवन में आने वाला है। यही परमेश्वर का सुसमाचार सुखी समाचार है। कभी सोच सकते हैं ऐसा सब ये जगह का नाम क्या है चुगट्टी लेकिन चुगट्टी का ये कौन सा रास्ता है ये आबादी में अगर आप आबादी में मर जाते हैं ना आबादी में जी उठेगा कभी सोच भी सकता है जब इधर ही मर जाता है और इधर ऐसा कभी कभी थोड़े लोग तरफ तरफ के मर जाते हैं हाय हु हो हा बोल के वापस इधर ही आएगा तो कभी सोच सकता है लेकिन परमेश्वर का योजना यही है परमेश्वर का योजना यही सभी वापस आना है सिर्फ आधा उनके योजना के आधा हो गया है क्योंकि आपको याद होगा वो दूसरे क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण वचन आदम में सब मरते हैं लेकिन प्रभु यीशु में वही सब जी उठेंगे यही पर प्रभु यीशु ने चुनौती दिया ना अपना जीवन। तो आज हमने देखा है कि ये पुराना नियम का शब्द शियोल जो 31 बार नरक का अनुवाद हुआ जो 31 बार कब्र का अनुवाद हुआ और 3 बार खड का अनुभव हुआ इसका मतलब है वही नरक है कब्र कब्र है खड और सब मिलता है सब का मतलब है मौत का स्थिति। तो नरक का मतलब है मौत का स्थिति जहां जीवन नहीं है जहां रोशनी नहीं है जहां याद नहीं है जहां करना नहीं है जहां बोलना नहीं है जहां कुछ भी नहीं। आपको याद होगा 2-3 क्लास से पहले ब्रदर जब आत्मा का क्लास ले रहा था आप बोल रहे होंगे ब्रदर तुम बोलते हैं आत्मा वापस नहीं आता लेकिन मैं सच बोलता हूं मैंने देखा मेरा बाबूजी को मैंने देखा मेरा मामूजी को मैंने सुना ये आवाज वो आवाज रात में 2-3 बजे में गरम गरम चपातियों बना के रखा हुआ उधर मैं देखा 3 बजे को बोलता है कि नहीं बहुत लोग बोलता है ऐसा साक्षी देता है कौन जाता है ये सब शैतानी काम है ये सब ताकि वो झूठ पहला दिन बोला झूठ ना जैसा परमेश्वर बोला जिस दिन उस पेड़ से आप खाते आप जरूर मर जाएगा बोला लेकिन शैतान क्या बोला تم کھاؤ تم ضرور نہیں مر جاؤ گے, تم کیسا بھی مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے, کیونکہ یہ موت صرف شریر کا ہے آتما کا نہیں ہے. اس لیے ہر ایک آدمی سوچ رہا ہے ارے میرا آتما نہیں مر سکتا ہے, یہ آتما بھٹکتے جاتا ہے. اگر کوئی آتما ہتیا کرتے ہیں نا اس کو گھر میں ڈر آتا ہے, کیونکہ اس کا جو آتما کو شانتی نہیں ہوا, کدھر نہیں گیا, ادھر نہیں گیا تو ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے, رات میں ہمارے کو تنگ کریں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن وچن ایسا بولتا ہے, پربھو نے کیا کہا, آپ سچائی جان جاؤ گے اور سچائی تمہارے کو آزادی کرے گا. سچائی کیا ہے؟ تیرا وچن سچائی ہے. تو یہی بات, تو آج ہم یہ پہلا شبد مطلب پرانا نیم میں ایک ہی شبد شیول میں دیکھ چکا ہے, ابھی ہم نیا نیم میں جائیں گے. نیا نیم میں تین شبد گریک میں ہے, پہلا ہیڈیز کا مطلب شیول, جیسا شیول ہے ہبرانیوں میں گریک میں ہیڈیز, جیسا ہم بولتا ہے نا پانی ہندی میں, اسی چیز کو انگریزی والا کیا بولتا ہے واٹر, اور اسی چیز کو کنڑا والا کیا بولے گا نیر, اسی چیز تامل والا کیا بولے گا تنی. تو دیکھو ایک چیز بدلتا نہیں ہے چیز, لیکن نام کیا ہوتا ہے بادشاہ میں بدلتا ہے. اسی طرح جو پرانیوں میں شیول ہے وہ گریک کے بادشاہ میں آتے وقت اس کا نام کیا بدلتا ہے ہیڈیز. ایک اور دو شبد گریک کے بادشاہ میں آتا ہے, وہ دوسرا شبد کیا ہے وہ تارتورو. ایک ہی وچن ہے تارتورو, پورا نیا نیم میں ایک ہی وچن تارتورو آتا ہے, وہ تو ہم دیکھ لیں گے. اور تیسرا شبد ہے گہنا, شاید اردو والے بولے گا جہنم, دوزخ وہ بھی وہی شبد ہے جہنم, ہیل ہیل ہے, لیکن یہ گہنا جو ہے جو دوزخ ہے. تو جہنم جیسا یہ اردو والے کہتا ہے وہ انگلش گریک میں گہنا ہے, تو وہ تیسرا شبد ہے, وہ تیسرا شبد بھی ہم دیکھتے ہیں. تو ہیڈیز, تارتورو اور گہنا, یہ تین شبد ہم دیکھ لیں گے اور سمجھ جائیں گے اس تین شبد میں نرک کا مطلب کیا ہوتا ہے. پہلا ہیڈیز, جیسا میں آپ کو بتایا ہیڈیز کا مطلب ہے شیول, وہی مطلب شبر. یہ تو ہم معلوم ہوتا ہے جب ہم ایک وچن دیکھتا ہے جو پرانا نیم سے نیا نیم میں آتا ہے, پرانا نیم بھی ہے اور نیا نیم میں بھی ہے. وہ شبد ہم وہ وچن ہم دیکھ لیں گے پریرتوں کے کام دوسرا ادھیائے 27 وچن, اور یہ وچن پرانا نیم میں بھجن سنہیتا 16 ادھیائے 10 وچن.
क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा.
किधर से पढ़ रहे हैं? प्रेरितों के काम
2:2 का सही.
हाँ, अभी यही वचन पुराण नियम में भजन संहिता 16:10
क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा.
वही वचन है ना. तो जब पुराने नियम में थे तभी हिब्रानियों भाषा में थे, तो हिब्रानियों भाषा में वो शियोल, यही वचन जब नया नियम में आता है वो शियोल के बदले आता है हेडिस. दोनों एक ही है, दोनों एक ही मतलब हम देख रहे हैं. तो अभी हम देखेंगे एक और वचन جو پریرتوں کے کام دوسرا ادھیائے 31 میں ہے, وہاں سے ہم ہم پڑھیں گے کہ اس ادولوک میں, اس ہیڈیز میں, اس نرک میں کون بھی گیا, پربھو یشو بھی وہاں گیا. تو یہ پڑھ لیں گے پریرتوں کے کام 2:31.
اس نے ہونے والی بات کو پہلے ہی سے دیکھ کر مسیح کے جی اٹھنے کے وشے میں بھوشیہ وانی کی कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई।
तो यहाँ तो देखते हैं अधोलोक प्रभु यीशु के बारे में दिया गया है। तो प्रभु यीशु वहां क्या बोल रहा, प्राण ना। अब तो ब्रदर ने आपको दिखाया होगा कि प्राण जहां जहां प्राण आता है हिंदी में वहां क्या आना चाहिए, आत्मा आना चाहिए, क्योंकि आत्मा और प्राण दोनों एक ही है अगर आप अंग्रेजी में देखे तो यहाँ तो पढ़ते हैं प्रभु यीशु का आत्मा भी कहाँ गया, अधोलोक में गया। अधोलोक का मतलब देखो, बहुत सालों से क्रिश्चियन सेवक ये वचन को पढ़ते हुए बहुत उलझन में पढ़ते थे, क्योंकि सोच रहा था अरे प्रभु यीशु भी नरक गया तो प्रभु यीशु क्यों नरक गया, प्रभु यीशु का नरक कैसा होगा, क्या उसी नरक होगा जो पूरा जल रहा है, जो सब पीड़ा और गम में है, प्रभु यीशु भी उधर गया, ना 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 ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ऐसा ऐसा बात कर रहे थे कि प्रभु यीशु एक एयर कंडीशन नरक में गया, ऐसा भी जैसा हम सुनते हैं हम ऐसा लगता है अरे यार ये बेवकूफी कभी हद होता है ना, इतना बातचीत होता है। तो ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। सच्चाई को जैसा हमने समझ लिया, पाप का मजदूरी है मौत और मौत है कबर और कबर है खड्ड और खड्ड है नरक है कबर, मरे हुए स्थिति। हमारा प्रभु यीशु भी मरे हुए स्थिति क्यों में गया, कितने दिन, 3 दिन मरे हुए स्थिति में था, तीसरा दिन उस मरे हुए स्थिति में से जीता। तो बहुत साफ है, कुछ भी उलझन नहीं है, कुछ भी बेवकूफ जैसे बातें बोलने की जरूरत ही नहीं है। बराबर बोलता है कि प्रभु यीशु मरे हुए स्थिति में गया, क्योंकि जब वो सांस छोड़ा क्या हुआ, प्रभु यीशु मर गया, प्रभु यीशु मर गया। लेकिन प्रभु यीशु इस मरे हुए स्थिति में कितने दिन तक रहा, 3 दिन, क्योंकि तीसरे दिन जी उठा। तो ये बात तो हम देखते हैं यहाँ नरक के बारे में। नरक तो यहाँ प्रभु यीशु के बारे में जब हम पढ़ते हैं वो तो कबर है, मरे हुए स्थिति है। यीशु ये बात को स्थापित करते हैं प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 18वां वचन, प्रकाशित वाक्य पहला 18।
वे तुमसे कहा करते थे,
मैं मर गया था और अब देख मैं युगन युग जीवता हूँ।
तो प्रभु यीशु ही कहता है, प्रभु यीशु ही सबूत देता है, प्रभु यीशु ही बोलता है कि मैं मर गया था। तो प्रभु यीशु मर गया था कितने दिन तक, 3 दिन। लेकिन वचन, हाँ वचन में हमने पढ़ा एक बात तो हम आपको तो बोलने को भूल गया, दोबारा पढ़ लेंगे प्रेरितों के काम 2:31।
उसने होने वाली बात को पहले ही देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया।
अधोलोक में छोड़ा गया क्यों, ना छोड़ा गया, अभी तो आप 15 क्लास सुन लिया है तो ज्यादा ज्यादा थोड़ा ज्ञान में आप तरक्की हो गया होगा। तो आप सोच लो क्यों ना छोड़ा गया, इसका मतलब क्या है। उसका प्राण मतलब उसका आत्मा अधोलोक में नहीं छोड़ा गया, उसका मतलब क्या है,
मतलब वहां पर गया था लेकिन वहां पर छोड़ा नहीं गया,
क्यों इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे मनुष्य जाति का आत्मा जब मौत में चले जाता है वहां छोड़ देते हैं, कब तक, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक। क्योंकि सारे की सारी नींद आती, सिस्टर बंद करते हैं आंख, होशियार रहो, सोचता है आप नहीं सुनना ये सच्चाई, बिल्कुल नींद में गया तो मौत की जैसा कुछ भी नहीं सुनता है, कुछ भी नहीं अंदर गया। तो होशियार रहो, ऐसा करेगा अभी। तो ये जो बात यहाँ हम देखते हैं, पूरा मनुष्य जाति के जो आत्मा अर्थात जीवन मौत में किधर पड़ जाता है, मौत में छोड़ देते, कब तक, पुनर्थान तक। और पुनर्थान कौन करेगा, प्रभु यीशु दूसरे आगमन में। लेकिन प्रभु यीशु का आत्मा उतना समय तक वहां अधोलोक में नहीं छोड़ा गया, क्योंकि प्रभु यीशु के आत्मा सिर्फ 3 दिन में जी उठा। समझ गया, इसलिए नहीं छोड़ा गया। मतलब बाकी जैसे लोगों का आत्मा जैसा चोर देते हैं, उसके आत्मा वहां नहीं छोड़ा गया, यही मतलब आप समझना है। तो ये बात तो हो गया है। अभी हम देखना है एक और बात हेडिस के बारे में, और इस हेडिस के बारे में वचन में अभी आप पढ़ लिया ना, प्रकाशित वाक्य 1:18 दोबारा पढ़ लो।
मैं मर गया था और अब देख मैं युगन युग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं।
इसका मतलब क्या है? मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास ही है। तो मृत्यु ही अधोलोक हमने अभी बोल दिया ना, तो मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां क्यों ऐसा अलग अलग, एक ही चीज को क्यों अलग अलग बोला, इसका मतलब क्या है? आपको याद है कौन सी क्लास में वो मरे हुए उनके मुर्दे को गाड़ने दे, कौन से क्लास में वो बात को सुन लिया?
करेक्ट।
तो आपको याद है बाइबल के हिसाब में मृत्यु और अधोलोक का मतलब अलग अलग है। क्यों? मृत्यु का मतलब है जीवन में है लेकिन जीवन नहीं है, मरने वाला। अधोलोक का मतलब है मर गया, अधोलोक में गया। तो दो स्थिति, जीवित रहने का स्थिति, मरे हुए स्थिति। सभी के ऊपर क्या दंड है? मौत का दंड है। सभी तो मरने वाला है, थोड़ा तो अभी तक नहीं मरा, बाकी सब मर गया है। तो ये है मृत्यु और अधोलोक का दो कुंजियां पर प्रभु बोलते, मतलब कुंजिया का मतलब अधिकार प्रभु यीशु को मिला पिता परमेश्वर से कि इस स्थिति में से छुटकारा करने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु के पास वो अधिकार पाया, और प्रभु यीशु उचित समय में उनके दूसरा आगमन में सारे के सारे लोगों, मनुष्य के लोगों, इस दोनों स्थिति में जीवित मरे हुए स्थिति और बिल्कुल मरे हुए स्थिति, मतलब जो कब्र में चले गए स्थिति, उस दोनों स्थिति में से छुटकारा करेगा।
अब तो बताया जाना कि मरे हुए दो तरह के हैं, एक तो जो मरने जा रहे हैं और एक जो मर चुके हैं। हम क्या हैं? हम भी मरे हुए हैं, हमारे पास अपने जीवन का कोई अधिकार नहीं है। हम क्या है? हम मरेंगे, लेकिन कुछ लोग मर चुके हैं। जो मर चुके हैं वो कहाँ गए? नरक में, अधोलोक में, मौत की स्थिति में। लेकिन हम जीवित मरे हुए हैं जो उस स्थिति में जाएंगे। तो वो दोनों का अधिकार किसके पास है?
छुटकारा करने का अधिकार। लूका में आपको याद होगा, लूका 9:60 वो वचन जहाँ पे ये रहस्य हमने पाया,
उसने उससे कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना।
तो ये वचन से हम मालूम हुआ कि कितने बड़े सच्चाई है परमेश्वर के वचन में कि मरे हुए दो स्थिति में है। एक तो वहां दिया है तुम्हारे मरे हुए गाड़ने दे, मरे हुए पढ़ लो दोबारा,
मरे हुओं को अपने मुर्दे
गाड़ने दे, मरे हुए अपने मुर्दों को गाड़ने दे। तो अंग्रेजी में लेट द डेड बेरी द डेड तो थोड़ा मुश्किल है, हिंदी में ज्यादा खास कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ मरे हुए और मुर्दे, मरे हुए मुर्दों को गाड़ने दे, मतलब गाड़ने का काम मरे हुए करेंगे। तो मरे हुए इसलिए कर रहा है क्योंकि उनके हाथ पांव काम करता है और अभी भी जिंदा है, लेकिन मुर्दा जिंदा नहीं है। तो मुर्दा का मतलब है मरे हुए, अंग्रेजी में बोलता है डेड डेड, ये हिंदी में क्या कैसे बोले मालूम नहीं, मुर्दा जो मर चुका है, और जीवित रहते हुए लोग अभी जीते हुए मुर्दा, जीते हुए मुर्दा
जीवित मुर्दा,
जीवित मुर्दा मरे हुए। तो ये दोनों स्थिति है, जीवित मुर्दा मरे हुए मुर्दा। मैं थोड़े क्लासेस में साउथ में भी कुछ बोलते हैं, अगर हम सब लोग सच्चे सच्चाई जान लेते, अगर सारा दुनिया सच्चाई जान लेते, हम एक दूसरे को मिलते वक्त हम क्या पूछते पहले पहले, ब्रदर आप कैसे हैं, क्या बोलते हैं, हम तो ठीक है। तो बोलते थोड़े लोग बोलते परमेश्वर की कृपा से मैं सब अच्छा चल रहा है, लेकिन सच्चा बोले तो क्या बोलना है, ब्रदर मैं अच्छी तरह मर रहा है, आप अच्छी तरह मर रहे क्योंकि वही मतलब है ना, क्योंकि हम सब मुर्दे हैं, हम सबके ऊपर मौत का दंड है, किसी से वो दंड नहीं निकाला गया, हम सब मरने वाला है, थोड़े तो मर गया है, थोड़े मरने वाला है, बस जीवित मुर्दा मरे हुए मुर्दा, बस यही बात। तो बहुत ही बड़ा सच्चाई, ये जो कुंजियां जो प्रभु यीशु के पास है, एक जीवित हुआ मुर्दा और मरे हुए मुर्दा के दो कुंजियों यीशु के पास दिया गया है, मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु जी उठने के बाद ये अधिकार प्रभु यीशु के हाथ में दिया, ये वचन भी है इस बात को स्थापित करने के लिए, वचन में पढ़ लो प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 42वां वचन, प्रेरितों के काम 10:42,
और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है।
बराबर ना, जीवितों और मरे हुओं के न्याय के लिए ठहरा गया है। देखो बहुत ही अच्छे वचन बराबर ये बात को स्थापित करता है। चलो ये हेडीज जो है मौत का स्थिति, कब्र का मतलब, यहाँ नया नियम में ना सिर्फ मनुष्य के लिए ये मतलब नहीं बोला, बल्कि एक शहर के लिए भी बोला गया था, एक शहर जहाँ प्रभु यीशु जा रहा था, जहाँ बहुत बड़े 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 चमत्कार किया था, लेकिन वहाँ कोई प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं रखा, उस शहर के बारे में भी प्रभु यीशु बोला कि तुम हेडिस में जाएंगे, मतलब तुम बिल्कुल दफना जाएगा। वचन में पढ़ लो मत्ती 11वां अध्याय 23वां वचन, मत्ती 11:23,
हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा, तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा, जो समत के काम तुझमें किए गए हैं यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता।
देखो ये कफरनहूम अभी एक बिल्कुल क्या बोलता है नाश की स्थिति में है, इस कफरनहूम का नाश, ये कफरनहूम का नाश जो हुआ, अगर आप विकिपीडिया गूगल में जाके देखें, वहाँ 750 एडी तक, मतलब 150 मसी से पहले से शुरू होके 750 मसी के बाद तक था ये शहर, और ये शहर उसके बाद जैसे जैसे यीशु ने बोला तुम कहाँ में जाएगा, अधोलोक में जाएगा, ये पूरा पूरा शहर अभी बिल्कुल नाश में चला गया, अभी तक पता भी नहीं है कि कफरनहूम कहाँ है। तो ये कफरनहूम के बारे में यहाँ प्रभु ये बोला, तो ऐसे ही हुआ। अगले हम देखेंगे एक और जगह जहाँ ये हेडीज का शब्द आता है नया नियम में, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 13:14,
समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया।
देखा ये जो प्रकाशित वाक्य का वचन है, हमेशा प्रकाशित वाक्य के वचन तो सरल भाषा में नहीं रहता, चिन्ह की भाषा में रहता है, यहाँ तो दिया गया है अंतिम न्याय के बारे में, और अंतिम न्याय के बारे में क्या दिया कि अधोलोक का मरे हुए बाहर आ जाएगा, मृत्यु के मरे हुए बाहर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जीवित हुए मरे हुए लोग का न्याय शुरू हो जाएगा, और जीवित हुए मरे हुए लोग के न्याय शुरू होने के बाद मौत में, मतलब मृत्यु मर चुके लोगों का पुनरुत्थान होते हुए उनका न्याय भी शुरू हो जाएगा। तो ये बात तो यहाँ प्रकाशित वाक्य में दिया गया है। 14वां वचन में पढ़ लो, क्या एक बहुत ही खास बात उधर दिया गया है।
मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, यह आग की झील दूसरी मृत्यु है।
तो इसका मतलब है ये स्थिति, ये दो स्थिति, जीवित होते हुए भी मौत का दंड का स्थिति, और मरे हुए भी बिल्कुल मतलब बिना जीवन में दफना गया, मतलब कब्र की स्थिति, ये दोनों स्थिति ना रहेगा, क्योंकि इस जीवित हुए मरे हुए स्थिति से भी छुटकारा पाएगा और कब्रों में से सभी तो जी उठ के वापस आएगा। तो ये दो स्थिति जो अभी दंड आया मनुष्य के ऊपर पाप के वास्ते से, प्रभु यीशु के राज्य में ये दोनों हटा दिया जाएगा, ये दोनों नहीं रहेगा, क्योंकि एक आदमी भी इस स्थिति में नहीं रहेगा, इसलिए ये दोनों आग में डाल दिया जाएगा, मतलब उसका सर्वनाश हो जाएगा, मतलब इसका स्थिति खत्म हो जाएगा, इसका स्थिति आगे नहीं रहेंगे। ये तो चिन्ह की भाषा में दिया गया है, ये तो बात तो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर एक आदमी को पुनरुत्थान होगा और पुनरुत्थान होने के बाद ये दोनों स्थिति खत्म हो जाएगा। अभी हमने ये बात हेडीज के बारे में साफ साफ देखे हैं कि हेडीज और शियोल में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। हेडीज जैसा शियोल में हमने देखा, कबर इसका मतलब कबर है, उसका मतलब है मृत्यु, उसका मतलब खंड, उसी तरह हम हेडीज भी उसी मतलब में हम देख चुके हैं। अभी हम बाकी दो शब्द देखना है जहाँ नरक की बात आता है। आपको एक बात बोलने को भूल गया है कि नरक का जो शब्द हिंदी में नहीं, पंजाबी में नहीं, अंग्रेजी में 53 बार पूरा बाइबल में आता है। हिंदी में और पंजाबी में शायद ज्यादा भी होगा, कम भी होगा, वो हिसाब करना है। जैसे तमिल में ज्यादा आता है, तो ये 53 बार जब आता है ना, जैसा हमने देखा है शियोल पुराना नियम में 31 बार और नया नियम में 22 बार ये तीन शब्द आता है, हेडिस और तार्तरो और गहना। हेडिस कितने बार आता है, तार्तरो मैंने बताया आपको एक ही बार आता है, तो ये हेडिस जो है 9 बार आता है, तो 10, तो बाकी कितना होना चाहिए 12 बार जो ये नरक का अनुवाद होता है नया नियम में, वो तो गहना में आता है। तो आज अभी हम देखेंगे वो दूसरा शब्द जो एक ही बार आता है तार्तरो। इस तात्रों का मतलब क्या है, ये भी क्यों नरक का अनुवाद हो गया, इसका मतलब हम देख लेंगे। एक ही वचन, दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय 14 वचन, दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय 14 वचन।
क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्ग दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में बेचकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे।
तो ये देखो, ये वचन मनुष्य के बारे में नहीं दिया, स्वर्ग दूतों के बारे में। तो ये जो नरक जो यहाँ अनुवाद किया, ये स्वर्ग दूतों के लिए नरक है। तो अगर नरक का मतलब मरे हुए स्थिति है, जैसा हमने पढ़ा दो शब्द शियोल और हेरिस, तो ये स्वर्ग दूतों का मरे हुए स्थिति है क्या, ये बात तो हम देख लेंगे। तो ये नरक जो स्वर्ग दूतों के बारे में दिया गया है, ये कहां बोला, दोबारा पढ़ लेंगे, दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय 14 वचन।
क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्ग दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे।
अंधेरे
कुंडों
में डाल दिया, अंधेरे कुंडों में डाल दिया। तो ये अंधेरे कुंडों में डाल दिया का मतलब क्या है, मतलब ये स्वर्ग दूतों ने जो पाप किया, परमेश्वर कोई एक जगह में डाला, उस जगह यहाँ नरक का नाम से हम पढ़ रहे हैं। कौन सा जगह में ये गिरे हुए स्वर्ग दूत परमेश्वर डाला वचन में, बाकी दूसरे जगहों में जब हम ढूंढ के जाते हैं, हम एफएसओ में 6 अध्याय और 12 वचन में पढ़ता है कि शैतान और शैतान के साथ के स्वर्ग दूतों कहाँ है, पढ़ लो एफएसओ 6 और 12।
क्योंकि हमारा ये मतलब युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक तनाव से है जो आकाश में है।
कहाँ है ये दुष्ट के आत्माओं और ये सेना शैतान के सेना किधर है? आकाश में। आकाश मतलब ये हवा में आसमान में। अगर हमारा आंख गिरे हुए तरफ जो देख सकते तो पंछियों के जैसा दिखेंगे सारे इधर उधर 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 घूमते रह रहे हैं शैतान शैतान के साथ सब स्वर्ग जो इधर एक करता है उधर एक बैठा हुआ है उधर सिस्टर के पास आके आंख बंद करने की कोशिश कर रहा है बंद करो बंद करो बंद करो। तो ऐसा हर जगह में ये गिरे हुए स्वर्गदूत हैं तो आकाश में है। देखो तो ये आकाश के स्वर्गदूत जो हम कहते हैं देखता है ये आकाश है तारतुरो मतलब ये ग्रीक के भाषा में आसमान मतलब आकाश होता है। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य जब मर जाता है एक कब्रस्तान में रखता है ना जैसा जलंधर का एक कब्रस्तान है अनेक कब्रस्तान होगा है कि नहीं। उसी तरह मैं बेंगलोर में जब मैं बेंगलोर का हूँ और मेरा बेंगलोर में बहुत से कब्रस्तान है जहाँ मरे हुए डालते हैं ना। लेकिन स्वर्गदूत जो पाप कर किया ये सारे जगत का स्वर्गदूत जो पाप किया वो एक ही स्थान में परमेश्वर रखा है वो इस धरती के आकाश में। इस धरती के आकाश से बाहर नहीं जा सकता है वापस स्वर्ग को नहीं जा सकता है इसी आकाश में रहना चाहिए। ये आकाश है स्वर्गदूतों ये गिरे हुए स्वर्गदूतों पाप किए हुए स्वर्गदूतों का कब्रस्तान वहां ये स्वर्गदूतों रहना चाहिए। ये बात तो ये वचन तो हमको बताता है। तो इस बात और भी गहरे समझने के लिए हम उस वचन में हम पढ़ेंगे दोबारा दूसरा अध्याय 14 वचन।
क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया
लेकिन ये जंजीर नहीं आता उधर इंग्लिश में क्या आता है मालूम डिलीवर्ड देम इन टू चेन्स ऑफ डार्कनेस। तो वे अंधेरे कुंडों में ना सिर्फ डाल दिया वो अंधेरे कुंडों में डाल के जंजीरों में बांध लिया गया ऐसा है बराबर ट्रांसलेशन पंजाबी में देख लेंगे दूसरा अध्याय 14 वचन।
क्योंकि जदो परमेश्वर दूतां नूं जिस वेले उन्हां पाप कीता ना छड्या सगो उन्हां नूं नरक विच सुट के अंधकूपा विच पा दिता न्याय दे लई काबू रहन मतलब पकड़ गया अंडर कंट्रोल।
तो यहाँ तो अंग्रेजी में डिलीवर देम इनटू चेन्स ऑफ डार्कनेस तो ये जंजीर और ये अंधकार का मतलब क्या है इसका मतलब क्या है अंधकार और जंजीर अंधकार और जंजीर का मतलब अगर हम समझना है जंजीर का मतलब है जैसा पंजाबी में हमने पढ़ा काबू में मतलब के क्या है एक जगह में रहना बाकी जगह में नहीं जा सकता है। ये स्वर्गदूतों स्वर्ग को जा रहे थे पूरा जगत को इधर उधर उड़ रहे थे लेकिन अभी इधर उधर जाने को नहीं है सिर्फ कहाँ रहना चाहिए सिर्फ ये धरती के आसमान में रहना चाहिए। ये है जंजीर ये है काबू। लेकिन काबू के साथ साथ क्या दिया गया है ये अंधकार के काबू है। तो ये अंधकार क्या है ये अंधकार बाइबल में पढ़ेंगे यशाया 7:2
देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है।
तो अंधकार का मतलब है अभी जीवन पृथ्वी का स्थिति दुनिया का स्थिति अभी ये जब ये स्वर्गदूत तो यहाँ बांध लिया गया है यहाँ काबू में रखा गया है यहाँ जंजीर में रखा गया ये दुनिया कैसा दुनिया है अंधकार का दुनिया
यहाँ परमेश्वर का रोशनी नहीं प्रकट हो रहा है। हम आप जो जो परमेश्वर के वचन पढ़ता है, जो जो परमेश्वर का वचन समझ लेता है, थोड़ा थोड़ा चमकते छोड़ते हैं क्या परमेश्वर का वचन। लेकिन हम तो सिर्फ दीपा है, एक दीपक, हम तो बड़ा रोशनी नहीं है। इतने अंधकार में, इतने अंधेरा में हमारा रोशनी कैसा है? छोटे छोटे दीपों बस। लेकिन दुनिया कैसा है? दुनिया के ज्यादातर लोग अभी अंधकार में हैं। तो ये अंधकार है, ये दुनिया, मनुष्य जाति के ये अभी का स्थिति। तो ये गिरे हुए स्वर्गदूत कहां बांध लिया गया है? अंधेरे कुंडियों में। कुंडी का मतलब शायद जंजीर है,
कुंडो जंजीर वाला,
वही मैं सोच रहा है। तो अंधेरे कुंडों का मतलब है बांधा हुआ स्थिति। तो ये अंधेरे कुंडों में मतलब अंधेरे मतलब दुनिया, कुंडों में काबू में। क्योंकि ये स्वर्गदूतों को इतना स्वतंत्रता था पहले, कहां भी जाने को जो मन लगा जा सकता था। लेकिन ये स्वर्गदूत अभी बाहर नहीं जा सकता है, ये बात तो हम समझ गया है। तो ये बात दोबारा हम स्थापित करेंगे एफेसियों 2:2, एफेसियों 2:2। कुंडी हाँ, जैसा ब्रदर बोल रहा है, कुंडी भी वो एक एक टुकड़ा होता है ना, ऐसा ऐसा नहीं नहीं हाँ, तो एक जंजीर जैसा चेन का, एक एक के बाद एक के बाद।
जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है।
तो इस अंधकार दुनिया का अधिकार वाले कौन है? उसी आकाश में है, उसी आकाश में पकड़े हुए, उसी आकाश में फंसे हुए शैतान और शैतान के स्वर्गदूतों। समझ गया? देखो भाई, बाइबल कहता है इधर थोड़ा उधर थोड़ा, वही बात बहुत साफ प्रकट हो रहा है। तो ये तार्तुरो है, ये नरक है। नरक मतलब मरे हुए स्थान, मरे हुए स्थान। ये स्वर्गदूत तो अभी तक मरा नहीं, मौत के लिए रखा गया है, मौत के लिए रखा गया है, मतलब उसका न्याय के लिए रखा गया है। लेकिन कहाँ रखा? इस संसार में, इस आसमान में, इस आकाश में रखा गया है। तो ये बात स्वर्गदूतों के लिए दिया गया है। लेकिन बाकी तीसरा शब्द जो अभी हम देखेंगे, गहना, गहना में आता है आग, गहना में आता है। ये गहना बारह बार आता है नया नियम में। इस गहना जब नरक का अनुवाद होता है, इसके साथ साथ आग भी आता है। अभी हम देख लेंगे ये क्या है, गहना देख लेंगे। मार्कुस 9 43 से लेकर 48 तक, मार्कुस 9 43 से लेकर 48 तक।
यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो पांव रहते हुए नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल दे, काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू दो आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती।
तो देखो यहाँ नरक के बारे में क्या दिया है, इस नरक में कीड़ा नहीं मरता और ना आग बुझती है। तो कभी कभी आपने सुना है अमर कीड़ा के बारे में, अमरत्व में कीड़ा है जो नहीं मरता है, ऐसा कोई कीड़ा है जो नहीं मरता? कभी देखा? हरे कीड़ा तो मरता है ना, तो ये अमर कीड़ा है, तो ये कीड़ा नहीं मरता है। तो ये नरक में ऐसा कीड़ा है जो कभी नहीं मरता है और ऐसा आग है जो कभी नहीं बुझता है। तो ये इसका मतलब क्या है? प्रभु देखो क्या बोलता है। आप शायद ये वचन बहुत बार आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा। इसमें क्या बोलता है प्रभु, अगर आपके आंख आपसे कोई पाप करता है, आपके आंख को क्या करना है? निकालना है। अगर आपका हाथ कोई पाप करता है, आपका हाथ को क्या करना है? काटना है। और अगर आपका पैर कोई पाप करे तो
आपका पैर भी काटा। मैं मेरे ख्याल से आप सब अच्छे मसीह हैं, मसीह है कि नहीं, आप सचमुच प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन मेरे लगता है आप पाप ही नहीं करते, दोनों आंग बराबर है, दोनों हाथ बराबर है, दोनों पांव भी है, क्योंकि हम दूसरे क्लास में जाते हैं कोई लंगड़ा भी आता है बोलता ब्रदर क्या हुआ एक पैर गया, नहीं ब्रदर प्रभु ने बोला पाँव तो थोड़ा हम माफ किया तो काट दो मैंने काट लिया। एक और आता है खाना है क्या भैया क्या हो गया आपका कहा आंग बहुत पाप कर रहे थे ब्रदर मैंने उठाया। तो ऐसा आप लोग तो नहीं मानता है, ऐसे बराबर नहीं कर सकते हो, अगर आप मच्छी मती है तो ऐसा करना पड़ेगा ना। तो आपको हंस रहा है क्योंकि आपको जानता है ये सच्चाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये चिन्ह भाषा है, ये असली सरल भाषा नहीं है। सचमुच जब हमारा आंख पाप करता है सचमुच उकाड़ना ऐसा तो यहाँ नहीं दिया गया है, ये हम समझना है। ये चिन्ह के भाषा में आंख का मतलब क्या है, पैर का मतलब क्या है, हाथ का मतलब क्या है, और दूसरा यहाँ प्रभु यीशु बोलता है अगर हम पाप करता है और अगर हम दोनों आंग और दोनों पैर और दोनों हाथ में एक मिनट ये दोबारा पढ़ो वो वचन टू बी नॉट बी थ्रोन इन टू गेहना नो दैट डज ओके बट टू पुट दिस मैटर अक्रॉस हाउ टू एक्सप्लेन इट दैट दोबारा पढ़ लो वो आखिरी शब्द मतलब
यदि तेरी आंख तुझे ठोकर के लाए तो उसे निकाल डाल
नहीं अंतिम वचन मतलब 47
यदि तेरी आंख तुझे ठोकर के लाए तो उसे निकाल डाल काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए भला है कि तो दो आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए।
देखो नरक में डाला जाए ये नरक जो शब्द आता है ना ये शब्द है गहना गहना जो है ये हमारा नोट्स में डिक्शनरी है और डिक्शनरी में वो गहना का मतलब क्या है जेरूसलम नगर के बाहर एक जगह था उसको गहना का नाम था वो उसका हिब्रानियो भाषा का नाम था द वैली ऑफ हिन्नोम हिन्नोम का खड्डा हिन्नोम की कदा हिन्नोम के कदा में वहां क्या करते थे वचन में पढ़ लो यिर्मयाह 7:31
और उन्होंने हिन्नोम वंशियों की तराई में तोबेत नामक ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को आग में जलाया है जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी और ना मेरे मन में वह कभी आया।
हिन्नोम के
तराई में
हिन्नोम के तराई देखो आपका नोट्स में यहाँ गहना एक डिक्शनरी में से हम हाईलाइट कर दिया है और उसी तरह हेल एक डिक्शनरी में हाईलाइट कर दिया है ये डिक्शनरी का एक्सट्रैक्ट है। तो ये गहना मतलब नरक ये हिन्नोम के तराई था हिन्नोम में तराई में ये लोग इजरायली लोग थोड़े समय क्या कर रहा था दूसरे भगवान को आराधना कर रहा था और ये तोफेत का भगवान को आराधना कर रहा था और वे तोफेत का भगवान कैसे था एक बड़ा मूर्ति बना देते अंदर थोड़ा खाली अंदर पूरा आग जलेगा और आंख ऐसे ही वो आग के रोशनी में ऐसे ही चमकेगा और उनके जो क्या बोलता प्रीच को क्या बोलता
याजक
उनके याजकों क्या कर रहे थे बड़े बड़े ये ड्रम्स में आवाज करते उसको बोल रहे थे कि अभी तोफेत परमेश्वर बहुत गुस्से है अभी तोफेत परमेश्वर को आप कुर्बानी चाहिए अभी कुर्बानी दे दो और बहुत से माँ और औरतों जिनके पास छोटे छोटे बच्चे थे वो छोटे बच्चे लेके उस दोनों हाथ ऐसे हाथ खुले थे उस दोनों हाथ के अंदर मतलब वेदी के अंदर डालते थे और ऐसा कुर्बानी कर रहे थे परमेश्वर ऐसा कुर्बानी कभी नहीं पूछा ऐसा काम करने को कभी नहीं बोला ये काम कर रहे थे इजरायली लोग जब वो परमेश्वर को छोड़ के दूसरे भगवानों को आराधना कर रहे थे और जब ये लोग
दोबारा अपने आम खुल जाते थे और मालूम हो जाते थे कि कितने बड़ा गलत कर रहे थे, तो उनको उसके मन में ऐसा लगा कि वह जगह जहां वो गलती कर रहे थे उस जगह को हम ऐसा बदलना है, जहां हम हमेशा याद रखना कि हम ये जगह घटिया जगह ही होना चाहिए। तो वो जगह में क्या किया, वो सारा नगर का जो कचरा है ना उधर डाल देते, और उसी के साथ न सिर्फ कचरा, मरे हुए कुत्ता, मरे हुए चूहा, बिल्ली वगैरह वगैरह उधर में फेंक देते हैं, और क्रूस में जो मर जाते था ना उनको भी दफना नहीं करते थे, वहां गहना में उठा के फेंक देते हैं। अगर आप कोई मरे हुए मामस कोई जगह में डालते हैं उधर से क्या बाहर आता है, कीड़ा। और ये कीड़ा जब तक वो पूरा मामस का नाश नहीं करता वो नहीं मरता है ना, इसलिए उसका कीड़ा नहीं मरता है, मतलब उसका ये नाश रुकता नहीं है, ये नाश सर्वनाश में बदलता है। और उसी तरह जब कचरे ज्यादा के ज्यादा कचरे वहां डालते थे और उस कचरे को नीचे करने के लिए क्या करते थे, कचरे को आग डालेगा और आग में वो सारा कचरा क्या हो जाता है, राख हो जाता है। तो वो आग भी नहीं रुकता, नहीं बुझता, जब तक सारे के सारे कचरा जलते थे वो आग नहीं बुझता था। तो इसके वास्ते बोलता था वो जगह जेरूसलम के बाहर का जगह देखते, आपको भी आपका भी गहना भी है, आप जलंधर में गहना है, दिल्ली में, दिल्ली से जब पंजाब आते था हरियाणा के रास्ते में उधर एक बहुत बड़ा गहना हमने देखा, मतलब पूरा नगर का कचरा उधर डालते हैं और डालते के जगह में पूरा बड़ा बड़ा आग जलाते हैं और वो सारा का सारा कचरा रात में बदल जाते हैं। तो प्रभु यीशु बोल रहे थे कि ये जो नरक है ये सर्वनाश का नरक, मतलब इस नरक से दोबारा जीवित नहीं हो सकता, इस नरक से दोबारा जान को नहीं आ सकता, क्योंकि ये नरक सर्वनाश है। तो ये नरक कौन सा है, ये कौन सा नरक के बारे में यहाँ यीशु बोल रहा था, ये तो हम देखेंगे अभी। ये तो चेले के लिए बताया था, ये चेलों के लिए ये एक चेतावनी था कि आप जिनके लिए ये आशीर्वाद मिला है, आप अगर आपका हाथ आपको पाप में लेके जाता है, आपका वो हाथ क्या करना है, काटना है। आपका आंख अगर पाप में लेके जाता है उकाटना है, पैर अगर पाप में लेके जाते हैं काटना है। ये चिन्ह का भाषा का मतलब अभी हम आपको बताएंगे, बाद में आपको बताएंगे ये सर्वनाश नरक क्या है। पहला आपका हाथ, हाथ अगर पाप में जाते हैं तो उसको काटना है। हाथ का मतलब क्या है, मैं चिन्ह के भाषा में बात कर रहा हूं, अभी सरल के भाषा में नहीं किया मैं तो चिन्ह के भाषा में। हाथ का मतलब क्या है, जब हम किसी नए आदमी से मिलते हैं आप क्या देते हैं, पैर देते हैं, क्या देते हैं, हाथ का मतलब क्या है, दोस्ती। अगर बोलता है कि हाथ भारत ने पाकिस्तान को हाथ आगे बढ़ा, इसका मतलब क्या है, दोस्ती। तो हाथ का मतलब दोस्ती। तो प्रभु क्या बोलता है कि अगर आप इस स्वर्ग का बुलावा मिलता है, जैसे जैसे अभी खुला है मसीहों के लिए, अगर आप स्वर्ग का बुलावा मिलता है आपका जिंदगी बदल जाएगा। और जब आपका जिंदगी बदल जाता है आपका पुराना दोस्तों के आदतों में आप नहीं जा सकता है, क्योंकि जब हम दुनिया में थे हम पुराने दोस्तों के साथ जब हम थे हम दुनिया के जैसे कामों कर रहे थे। दोस्तों के साथ कहाँ जाते हैं, दोस्तों के साथ क्या क्या बात करते हैं, दोस्तों के साथ किन किन बातों के लिए हम हंसते थे, याद है, शर्म आता है ना, ये सब बात नहीं कर सकता अभी। तो यहां बोलता है अगर तुम इस बड़े मौके के अंदर आ रहा है, मतलब अभी सुसमाचार युग के मौके के अंदर आ रहा है, और अगर आपका हाथ मतलब आपका दोस्त आपको पाप में लेके जाने को प्रयास कर रहा है, उस हाथ को क्या करना है? काटना है। उस दोस्ती को क्या करना है? काटना है। छोटे छोटे लोग बोलेगा ब्रदर वो मेरा चड्डी दोस्त है ब्रदर, हम छोटे उम्र से एक ही प्लेट से खा रहे थे, हम उस दोस्ती को कैसे काट सकता? प्रभु बोलता है अगर वो दोस्ती आप पकड़ना है तो वापस आप उसी पाप के रास्ते में जाना है पड़ेगा, क्योंकि वो दोस्त सच्चाई में नहीं आया, वो दोस्त को परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं पाया, वो दोस्त इस दुनिया के बड़े सारे गंदे गंदे बातों को अच्छा लगता है, गंदे गंदे आदतों को अच्छा लगता है। आप जा सकते हैं वो सब आदत में और आप वो सारे बातों को अभी कर सकता है और वो सब गंदे गंदे मजाक अभी आप कर सकता है? तो बोलता है अगर आपका हाथ पाप में लेके जाता है उस हाथ को क्या करना है? काटना है। मतलब जब आप इस बुलावा में आता है, पुराना रिश्ताओं पुराना दोस्तों अगर आपके लिए एक हर्डल को क्या कहते हैं, एक रुकावट बन जाता है आपको क्रिस्ट के मार्ग में आगे जाने के लिए एक रुकावट बन जाते हैं, आप उस रुकावट को क्या करना है? हटाना है, काटना है। तो ये पहले बात प्रभु बोलता है इधर। दूसरे बात क्या बोलता है? अगर आपके पैर आपको पाप में लेके जाता है उस पैर को काटना है। पैर का मतलब है जगाओ। जो जब हम इस सच्चाई को आने से पहले दुनिया वालों को जैसे हम सिर्फ जगाओ को जा रहे थे, बाहर को जा रहे थे, बाहर में मस्त में बैठ रहे थे, चलो लेके आओ कबाब लेके आओ गपशप करेंगे, कर सकता है ऐसे जगह जा सकता है? क्लब में जा रहे थे, डिस्को कर रहे थे, जा सकते हैं? जाओ देखो क्या होता है। नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा अलग, अंदर क्या आत्मा मिला अभी सच्चाई के जरिए से पवित्र आत्मा, उधर क्या आत्मा है? दुनिया का आत्मा। उधर गया तो आपका 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 मन ऐसा 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 कुछ इतना